pure come il jantya
kachkuchi adigata
antiano tirandasya kana yana salate chatu rini sanjin satri sidiri pantapa chatavasya pasi పతితానం పావనిభూ నమో మహాబద్రాయ కృష్ణ ప్రేమ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యం గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయై కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ జగద్భక్తాయ మం విష్ణుపాదాయ కృష్ణాయ అతిమత్తరిత్రాయ స్వాసినందే నామ ప్రేమ నారాయణం నమస్కృత నరంగశైవ నరోత్తమ దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తపో జయ हम लोग के नित्य परमाराध्यतम भक्ति प्रज्ञान के सदस्य आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में 3 दिन का व्यास पूजा महोत्सव कल वृंदावन में उनके पपरा के जीवन के संबंध में उपदेशों के संबंध में हम लोगों ने कुछ विचार किए सवेरे भी शाम को। आज भी उनके संबंध में कुछ हम लोग विचार कर। आप लोग जानते हैं कि उनका आविर्भाव माघ
शुक्ला
तृतीया तिथि को बंगाल में हुआ था। माता पिता बड़े धार्मिक थे, उनके पूर्वज भी वैष्णव थे, माता पिता पर धार्मिक थे। बचपन का जीवन भी उसी प्रकार से उनका बीता। कुछ अलौकिक उनके जीवन में सब घटनाएं होती थी। परम सुंदर और बड़े साहसी बलवान ये थे बचपन से ही, इसलिए इनका नाम भीम रख दिया गया। बलवान मोटे ताजे जस्ट पुष्ट ये भी और अत्यंत सुंदर थे, इसलिए
ज्योत्सना
ज्योत्सना जो और
जनार्दन भी नाम
है।
जनार्दन भी नाम
जनार्दन जनार्दन भी नाम। और प्रभुपाद जी ने इनको इनका नाम विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने दिया। विचार कर बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी हम लोगों ने वृंदावन में बताया। होनहार बिरवान के लिए पहले से ही
ये पता चलता है कि ये कैसे कृति।
बचपन में ये लोग चार भाई थे, ये दूसरे नंबर पहले नंबर के थे और लवनी महाराज जी इनका संन्यास का नाम हुआ। वो बाग बाजार गौड़ीय मठ के आचार्य थे, जैसे गुरु महाराज जी एक समिति वेदांत समिति के आचार्य हैं वैसे ही आचार्य थे। बड़े भारी विद्वान थे, अंग्रेजी बंगला इत्यादि के थे, बहुत सुंदर भाषण भी देते थे, वक्तृता देते थे, भागवत की व्याख्या खूब सुंदर करते थे, विद्वत पुरुषों में उनका नाम था। और दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर पुलिन बिहारी ब्रह्म पुलिन बिहारी जी थे। चतुर्थ और एक भाई थे, वो स्वदेशी आंदोलन में राजनीतिक पार्टी के लीडर, चारों अग्रणी, किंतु चारों में यही सबसे अधिक विचारक थे और माता जी के ऊपर में ये हुए थे, लेकिन माता की इन पर बहुत स्नेह करती, जमींदारी का भार ये छोटे होने पर भी इन पर दिया गया, माता जी इन पर विश्वास करती थी और इनका विशेष ध्यान था। पिताजी जहाँ जाते कोई धर्म सभा होती, गीता का भागवत का पाठ होता है, तो ये जरूर जिद करते जो मैं चलूंगा। मेरे पिताजी अब उनकी अंगुली पकड़ करके दूर होता तो अपने कंधे पर बैठा करके और ले जाते और इनको वापस लाते। बचपन से धर्म की प्रवृत्ति थी, बड़ी दया थी, दयालुता के लिए मैंने व्रत लाया, कल मन बताया जो कैसे दयालु थी, जो माँ शाम को रात में लठिया लेकर के खड़ी थी, तुम कहाँ गया था बतलाओ, रात हो गई, मैं नहीं चाहता कि तुम 6 बजे के बाद में तुम कहीं बाहर न जाओ, शासन करती थी। तो एक दिन उनको पकड़ लिया, वो 10 बजे रात में लौटे, अरे बतलाओ तुम कहाँ गया, वो बतला नहीं रहे थे, मैया और बिगड़ गई, जरूर कुछ गड़बड़ी, कहाँ तुम था, हमारे लड़कों के साथ में घूमता है या क्या करता है। तो उन्होंने मैया को बतलाया पीछे से, भैया मैं गया था, देर हो गई, एक बुढ़िया है यहाँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया, घर में कुछ नहीं है, बीमार पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं, तुमने हमको जो पैसे जोड़ने के लिए दिए थे खाने के लिए मैंने खाया नहीं, और कुछ इकट्ठा किया समाज से जिसको कोई जान न सके, और रात में इसलिए कि कोई देखे नहीं, ये काम कर रहा है, क्योंकि वो लज्जा करेगी, अच्छे घर की लड़की वो है और वो गरीब हो गई है, इसलिए उसको भी निंदा का डर है ना, इसलिए मैं रात में उसके पास में जा करके उसको खाने के लिए व्यवस्था किया, घर घर से कुछ लेकर के दिया और उसकी दवा की व्यवस्था की, डॉक्टर को दिखलाया और उसको किसी प्रकार से रख करके अपने आया। बस मैया के आंखों से आंसू निकलने लगा और कही अब से तुमको मैं कुछ नहीं जाटूंगी, उन पर विश्वास हो गया। तो ऐसे वो तैयार हो, पिताजी जहाँ सभा होती वहीं पर इनको ले जाते और यही सब सुनते, यहाँ तक कि स्कूल में उस समय में बीए क्लास में चैतन्य चरितामृत ये पाठ्य पुस्तक थे। तो एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर लोग चैतन्य चरितामृत के कुछ प्यारों को पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ गलत बतला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे अर्थ नहीं होगा, अपने प्रोफेसरों को उन्होंने समझा कर प्रभुपाद के पास में आए थे, थोड़ा सा संपर्क हो गया था 16 वर्ष की स्थिति में ही, प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा लिया, हरिनाम और 2-1 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ कौन सा तत्व, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, वदन्ति तत्व विदस तत्वम इसी का बंगला तैयार में जो उन्होंने अर्थ किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान का तत्व है और जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रदान। अद्वैत ज्ञान पर तत्व किसको कहते हैं और भेदाभेद प्रकाश क्या होता है, तटस्थ शक्ति क्या होती है? बिना गुरु से इन चीजों को समझ करके किसी को इसमें तनिक भी प्रवेश नहीं हो सकता है। गुरु की बहुत दिन सेवा करे, वैष्णव की सेवा करे तो ये सब समझ में आएगा। अब बिना इन सब समझे तत्व में प्रतिष्ठा नहीं होगी, भजन भी आरंभ नहीं होगा। तो उन्होंने गुरु जी जब उनको नहीं आया तो उन्होंने जब उन्होंने उल्टा सीधा व्याख्या किया तो उन्होंने तर्क कर दिया, पूछा आप पास काट करके मत चलिए, अद्वैत ज्ञान किसको कहते हैं बतलाइए, भेदाभेद क्या है, तटस्थ शक्ति क्या है और कृष्ण अद्वैत ज्ञान कैसे होंगे तो तुम बतलाओ तो बस। विशेष करके इसका विचार उन्होंने दिया है अचिंत भेदाभेद ग्रंथ में। सुंदरानंद विद्या विनोद और ये हरिदास दास, राधा गोविंदनाथ और अनंत वासुदेव जी, ये चार इलेक्टुअल जैंट और धर्मराज के गुरु जी कहते थे ये गुंडे हैं,
त्रिशूल का
त्रिशूल का ही है गुंडे हैं। ये छिपा करके कुछ कुछ कर, तुम चोर नहीं हो, नहीं को हटा दिया, तुम क्या बाकी हो गया,
चोर हो।
ये तो शास्त्र में लिखा तुम चोर हो, ऐसे ही शास्त्रों की बातों को छिपा करके उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ अध्ययन किया। सुंदरानंद विद्या विनोद जी के बहुत विद्वान आदमी, बहुत से पुस्तकों को लिखा। गुरु जी ने कहा है जब तक वो प्रभुपाद जी के आश्रय में थे तब तक तो ठीक लिखा उन्होंने, और जब प्रभुपाद जी का अंकुश हट गया, स्वेच्छाचारी हो गए और गुरु जी को भी छोड़ करके बाबा जी सजिया बाबा जी से हो गए, तब निरंकुश होकर के उन्होंने अंत संत गड़बड़ सब लिखा। वेदांत हमारे भागवत में लिखा है वदन्ति तत्व विदस तत्त्वं यज्ज्ञानम अद्वयम्, कृष्ण ही अद्वैय ज्ञान पर तत्व, अद्वैय ज्ञान पर तत्व और अद्वैत बात एक नहीं है। सुंदरानंद विद्या विनोद ने यह कहा कि कृष्ण भागवत जो है अद्वैय ज्ञान पर तत्व को स्वीकार करती है और उसी का प्रतिपादन करती है। अद्वैय ज्ञान मानते हैं नौ द्वय किति अद्वय, क्या दो अर्थात अद्वैत है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय महाप्रभु जी का संप्रदाय अद्वैतवादियों के निकट में है, तुम लोग समझो नहीं तो तुम लोग पढ़ने से भी नहीं समझेगा, लिखो पीछे समझो नहीं तो भरंडा भागेगा। तो उन्होंने ये बतलाया न द्वैत इति अद्वैत, न द्वय इति, इसका तात्पर्य यह है कि हम लोग अद्वैत ज्ञान को भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, दो नहीं आता कि एक है, कृष्ण एक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वेंद्रपुरी पर जो कि अद्वैतवादी सन्यासी थे उनका शिष्यत्व ग्रहण किया और उनके जितने परिकर थे उन लोगों सामने अद्वैत मत नहीं लिया। महाप्रभु जी ने स्वयं अद्वैत मत के केशव भारती से संन्यास लिया, यहाँ तक कि इस माधवेंद्रपुरी भक्त होने पर भी उन्होंने संन्यास लिया अद्वैतवादी से, यहाँ तक कि मध्वाचार्य ने भी अद्वैत साधु से संन्यास लिया, अद्वैताचार्य इत्यादि सब अद्वैत अद्वैत संप्रदाय के ये सब निकट में है। इसलिए हम लोग गुरु जी ने कहा कि ये पाक संग्रह है, ऊपर से जो कम पढ़े लिखे हैं नहीं समझेंगे, तत्व के भीतर नहीं प्रवेश करेंगे। वो तो कहेंगे सचमुच तो अद्वैत ज्ञान पर तत्व। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कहा कि हम अत्यंत भेदाभेदवादी हैं, ये किसका मत, भागवत का मत नहीं है। तब महाप्रभु जी ने इसको क्यों स्वीकार किया? इसलिए श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय अत्यंत भेदाभेद है, ये समझो, अद्वैत ज्ञान नहीं है। अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य यहां न द्वितीय, अद्वितीय का तात्पर्य है उनके समान कोई नहीं है, ये अद्वैत ज्ञान का
असम्मति
सय
असमोर्ध और सम ऊर्ध असमोर्ध, ये नाम है अद्वैत ज्ञान का। महाप्रभु जी ने नहीं कहा कि हम अद्वैतवादी हैं, तो ये अत्यंत भेदाभेद बात किसका है? हमारे जीव गोस्वामी का विचार क्या है? अत्यंत भेदाभेद है ना अद्वैत ज्ञान है?
अत्यंत भेदाभेद
तो फिर अत्यंत भेदाभेद यदि अद्वैत ज्ञान ही भागवत का ये तात्पर्य है तो ये कहां से आए लोगों ने? तो अशास्त्रीय विचार का उन्होंने अनुमोदन किया या विचार किया अत्यंत भेदाभेद, इसलिए सुनरा नंद का ऊपर से नीचे कहना तक और वो जितने हैं जिनका नाम अभी तक दिया सब विरोधी है महाप्रभु अचिंत भेदाभेद, क्योंकि श्रीमद् भागवत में अचिंत भेदाभेद का बात लिखा है और गीता में भी अचिंत भेदाभेद, समस्त शास्त्रों में अचिंत भेदाभेद। वेद का यह अंश व्यवहारिक है और यह परमार्थिक है ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। जैसे तुम हो मैं हूं वह, ये तो शास्त्र में सर्वत्र है। तत्त्वम् असि, ये तुम शब्द आया कहां से? यदि है ही नहीं है, एक ही तत्व है, तो ये वेद तो सत्य है ना, वेद को तो सभी, तो ये कहां से है?
तुम शब्द कहां से,
तुम कहां से आए और किसको कह रहा है? सब को, तो ये कहां से आए? इसलिए अद्वैत बात ही नहीं है कोई। अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं है कि एक ही है, अद्वैत का तात्पर्य असमोर्ध अलौकिक असमोर्ध सहस्त्र शक्ति युक्त राश शक्ति विविध नित्यो
नित्यानंद
है। यहाँ पर नित्य नित्यों का भी परम नित्य है, बहुत से नित्य को स्वीकार किया और तब उनमें भी परम तत्व को स्वीकार किया। गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम अपरम पुरुषोत्तम ये सब ऐसा क्यों वर्णन किया और बतलाया? ये पुरुषम मैं ही, जो कोई मुझे जानेगा मां में एव प्रपद्यन्ते ताम माया मेतम सर्वधर्मान प्रत्येक मां में एकम, ऐसे कहते हैं मां में एकम। किसको कह रहे हैं? झूठे को, जो झूठे लोग वहां पर थे, अर्जुन झूठा है इसलिए नहीं, बहुतों में जो सबसे सर्वोत्तम है उसको अद्वितीय अथवा अद्वैत ज्ञान जिसमें सभी हैं
एकत्व बहुत।
इसलिए भागवत का तात्पर्य अचिंत भेदाभेद है, गीता का तात्पर्य वेदों का, वेदांत का, उपनिषद सबका तात्पर्य है क्या?
अचिंत भेदाभेद,
क्योंकि वेद के समस्त पक्षों की पुष्टि इससे होती है। वेद में दो तरह के विचार हैं, भगवान की शक्ति भगवान से भगवान की शक्ति और शक्ति से परिणत जो वस्तुएं हैं जीव और जगत का भगवान के साथ में भेद भी है अभेद भी है, यह अत्यंत भेद। वेद में बतलाया जैसे बतलाया नित्यो नित्यानंद सौ सपर्णा सायुजो सखाया
समान वृक्ष पृष्ठ जाति,
एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक पक्षी जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा का साक्षी है, वो सब देखता है क्या ये कर रहा है, और जीव फल चखता है, क्या फल? अपने अच्छे गुरुओं कर्मों का फल चखता है। प्रभु चखता नहीं है, वो क्या करता है? साक्षी के रूप में देखता है ये क्या कर रहा है। तो ये दोनों दो हुए, ऐसे हजारों सब मिलेंगे। और ये भी लिखा है सर्वानुखालोम सभी ऐसा भी लिखा, ऐसे बहुत से हजारों सब मिलेंगे। एको
एको हम बहुश्य
बहुश्य ऐसा भी लिखा गया। सऐक्षत उन्होंने इच्छा की और ये जगत और जीव हुआ। इसलिए अद्वैत नहीं है ये, ये दोनों को मिलाकर के वेद के सभी अंश ही सत्य है, उसमें कोई भी झूठ और व्यावहारिक नहीं है, सभी परमार्थिक सत्य है। किंतु उनमें तारतम्य है। जैसे हम लोगों में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बुद्धि में, कोई अकल में, कोई कुछ में, कोई शारीरिक बल में, सब में तारतम्य है। उसी प्रकार से तारतम्य उन्मा पर शिकार, सभी एक अद्वैत खिचड़ी निर्विशेष निराकार, ये अव्यय ज्ञान का तात्पर्य। उसी के अंदर में उनकी शक्ति और शक्ति परिणत समस्त जीव और जगत सबके साथ में प्रभु का कृष्ण का भेद भी है, किंतु कैसा है? अचिंत्य। मानव वेधा के द्वारा अपनी शक्ति से नहीं होगा, वेद बुद्धि कम में है। वेद बुद्धि माने गुरु परंपरा से जो विचार आ रहे हैं उसका अनुसरण करने पर हम देख सकेंगे कि ऐसा, और कोई स्वतंत्र सोचे चिंता माने एकदम कुछ चिंता नहीं किया जाता ऐसा। इसलिए ये सब विचारों को कौन सुनेगा, कौन बतलाएगा? स्कूल कॉलेज में ये होगा, इसलिए गुरु महाराज जब कोई ऐसे सुंदर स्पष्ट करते जब उनको समझाने लगे वो देखते रह गए, कहीं इनके यहाँ हमको क्या पढ़ना, बस काजरी जाएंगे करके प्रभुपाद के चरण कमल विद्या भाई। विद्या किसको कहते हैं? भागवत आवधि,
भागवत आवधि
अथवा साविद्या,
तन्मतिर्जय,
जिसके द्वारा भगवान के चरण में मति है। इनसे गुरु जी से हम अपने पढ़ेंगे, इनसे क्या हम पढ़ेंगे? ये तो हमारे छात्र भी होने लायक, इसलिए छोड़कर के चले। जब वहां आए प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे वो आए थे अपनी पिसी माँ के साथ,
सरोज
सरोज
पास में,
हम लोग ने शेष साई देखा होगा, तुम देखे थे, और कोई यदि होगा पुराना आदमी तो देखा, ये भी देखे हमने, कि उसमें याद है शेष साई देखे थे। बड़ी विदेशी महिला थी, बहुत विदेशी महिला, साथ साथ में कविता बनाती थी। गुरुजी परिक्रमा जा रहे हैं और उनका लिखना हो चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर कैसे दर्शन किया कराया सब, तो वही छोटे से बच्चे 16 वर्ष के बच्चे को ले आई थी, वही इनको हरि कथा पहले सुनाती थी। अंत तक गुरु महाराज जी ने बड़ी किए रखी, उनकी सेवा कर रहे अंत तक सब हो। तो वो इनको लेकर के प्रभुपाद जी के आई, या प्रभुपाद के चरण में इनको समर्पित कर दिया। तो प्रभुपाद जी उस समय कहते थे कि हम अभी एक भी मठ नहीं था केवल मायापुर में। उन्होंने कहा कि 9 द्वीप में 9 हम मठ करेंगे, और भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े शहर हैं सब जगह में हम प्रचार केंद्र करेंगे, और वहीं से सब जगह पृथ्वी भर में
प्रचार
करेंगे भगवान का, कीर्तन का, ना चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का और कीर्तन का प्रचार करेंगे हम विश्वभर। इन्होंने कभी भी मठ तठ और जमीन खरीद करके नहीं बनाया। जिस प्रकार से हो किराए में रखा, प्रभुपाद जब तक थे अधिकांश किराए में ही थे, क्यों? लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और वहीं से प्रचार होगा। तो ऐसी जब तक भावना थी, निस्वार्थ भाव से सब लोग रह करके खूब प्रचार करते। गुरु महाराज जी क्या करते थे, जब मठ में आए पढ़े लिखे लड़के, जमींदार घर के लड़के, परम कोमल शरीर इनका, और वो बिना जूता, बिना किसी चीज के, बिना छाता, सवेरे भोर में अन्न चावल माने उसी को गीला बना दिया जाता,
माड़ी अन्न,
और उसमें नमक देकर के खा लिया,
अच्छा लगते है।
कभी उसमें साग भी उसमें मिला दिया
सजने पर,
कभी कुछ और दे देते, इसी तरह से कभी आलू उसमें दे देते, और सवेरे खा करके निकल जाते बक्सा लेकर के लकड़ी का, और कुंजी रहती
प्रभुपाद जी के पास
सबकी। और प्रभुपाद ने कहा दो पैसे चार पैसे एक आना से अधिक मत लेना किसी से, बस एक पैसा दो पैसा जो डालेगा बस पैसे। और ऐसे नहीं, महाप्रभु जी के कथा सुनाना जी, कहां से तुम लोग आए हो, मायापुर से आए हो या कहां से, गौरीमठ से आए, किस लिए हम लोग ले जा रहे हैं, एक बात कृष्ण नाम कीजिए, कृष्ण नाम का क्या महात्मा है, भक्ति किसको कहते हैं, इसलिए लोगों से संपर्क होगा और प्रचार होगा और मान अभिमान दूर होगा। तो गुरु जी जाते थे, एक दिन प्रभुपाद अपने प्यारी लाल ड्राइवर माने ब्रह्मचारी थे प्रभुपाद का ड्राइविंग कर, तो वो दो पार में कहीं काम से जा रहे थे कलकत्ते में
गड़ेमठ
जहाँ पर की किला है अंग्रेजों का द्वारा स्थापित किया हुआ, बहुत बड़ा भारी महल था, उसमें एक बरगद के पेड़ के नीचे दो पार में 12 बजे दोपहर में और जेठ के महीने में एक पेड़ की जड़ पर वो बक्सा रख करके उसी के ऊपर में सीट दे करके और ऐसे ही विश्राम कर रहे थे गुरु जी, 16-17 वर्ष के बच्चे 18 वर्ष। प्रभुपाद जी ने देखा, प्यारीलाल ने अरे देखो विनोद 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 सो रहा है, प्रभुपाद जी ने देखा चले गए कि तो फिर शाम को आकर के वही देकर के इनकी विशेष कृपा हुई, जैसे यशोदा जी का परिश्रम देकर के कृष्ण द्रवित हो जाते हैं। कृपा कब होती है, किसी की एकांती कथा देकर के, गुरु सेवा में, गुरु सेवा में क्या ये भगवान की कथाओं का प्रचार, गुरु जी का पैर दबा रहे थे ना, गुरु जी को खिला रहे हैं, किंतु गुरु जी के इसके लिए ऐसे कोमल शिशु बच्चे अभी, और इस प्रकार से दोपहरी में धूप में चिलचिलाती हुई धूप और कृष्ण बिना खाए, गुरु क्यों नहीं दया करेगा उनको, अवश्य करता है। ऐसे ही कृपा को ग्रहण करने की शक्ति चाहिए, कठोर परिश्रम भी तो चाहिए। एक समय में इनको कोई उतना नहीं जानते थे जो ये पढ़े लिखे और विद्वान आदमी और खूब मेधा युक्त हैं, साधारण ही समझते थे, किंतु सभी लोग जानते थे ये अलौकिक बात, सभी बड़े डरते थे। परमानंद प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य दोनों एक सम वयस्क, परमानंद प्रभु जी की उम्र इनसे 4-5 वर्ष बड़ी ही होगी, किंतु दोनों में लंगोटिया याद जैसा भाव, एक ही छावना पर सोना, कभी एक थाल में भी खा लेना, ऐसे उनसे आप प्रभुपाद जी की सेवा करते थे और तू तड़ाका परस्पर करते थे, और प्रभुपाद जी इनको तुमी तुई दोनों को, और वो ऐसे थे रात में यदि कहीं किसी काम में गए हैं 12 बजे रात में लौटे, प्रभुपाद प्रभुपाद खोलो प्रभुपाद खोलो, ढाका दिए जोर कर दिए और सब लोग ये क्या कर रहा है, प्रभुपाद जी को उठा रहा है सो रहे हैं, और वो मानेगा नहीं, जोर जबरदस्ती कर करके अभी सो रहे हैं इसे कसे उठा करके, तब फिर जाकर के घर में सब ठीक ठाक कर करके प्रभुपाद का मुसहरी लगाना और सब काम यदि ठीक ठाक देख सुन करके तब फिर आराम से, हम लोग तो कितना करेंगे, किंतु उनकी सेवा के लिए ऐसा। यदि किसी को पैसे की जरूरत है तो प्रभुपाद जी सहज ही पैसा नहीं देते थे किसी को, बड़ी मुश्किल से देते थे, जानते थे जब पैसा को रोजगार करना सहज है किंतु पैसे को परमार्थ में खर्च करना बड़ा कठिन है, पैसे को खर्च करके नरक में लग जाएंगे, एक ही पैसा कहां से कितना कष्ट करके लाया है इसको कैसे परमार्थ में केवल हम करेंगे इसका कल्याण हो, इन्हें सहज ही नहीं देते, नहीं देते थे, और जरूरत है तो जाकर के परमानंद प्रभु से लोग कहते थे प्रभु प्रभुपाद तो दिवे ना आपने कुछ प्रभुपाद कैसे थे के नियम आके दिए, तो कहते थे प्रभु 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 अरे पैसा तो दिए देना फिर ये देना फल ये दे मैंने दे दीजिए, अरे तुम चुपता था तो अंत में जब प्रभुपाद जी दे दे ठीक है, नहीं दिया यदि किसी कारण से, तो बस झट पॉकेट में हाथ निकाल करके और पैसा ले लिया और लेकर के जाओ। ऐसे उनके मूलज्ञ और बड़े प्रिय थे। तो प्रभुपाद जी का नियम था, यदि किसी ब्रह्मचारियों में कोई मनोमालिन्य हो गया तो हर एकादशी को या कब कुछ मीटिंग कराते थे और उसमें सब ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों को बुलाते थे और इनके गुण के संबंध में कुछ बोलिए, ऐसा करते थे। जैसे किसी दो लड़कों में लग गया, उन्होंने कहा तुम इनके संबंध में बोलो और उसको कहे तुम इनके संबंध में बोलो, तो उस समय तो भरी सभा है, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी और ब्रह्मचारी सब लोग हैं, उस समय अवगुण की तो बात कर नहीं सकते, केवल गुण की बात कर सकते। अरे हमारे लिए इतना कारा है, तो वो भी अब अच्छी तरह से उसके संबंध में बतलाया। तो दोनों में गुण वर्णन करने से ऐसा ही होता है। तो एक दिन किसी कारण से गुरु जी को